अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 12 है। नॉवेल डॉक्टर दुआगो, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 12। यहाँ इस छोटी सी गिरफ्तारी मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी। अखबारात शानदार सुर्खियां जमाएंगे। ओ समझा, रहमान साहब घुर्राए, बैठ जाओ। बताओ, लड़की फिटनर ही है? मैं नहीं जानता, कसम ले लीजिए। लेकिन तुम भी तो शुबे से बालातर नहीं हो। मैं तो कुत्ते के पल्ले से भी बालातर नहीं हूँ। लेकिन बकवास मत करो, तुमने मेरे लिए बदनामी का बायस बन रहे हो। दूसरे शहर में जाकर नहीं मर सकते, मजबूरी है। यहाँ तो आप ही रहम खाकर कफन दफन का इंतजाम कर देंगे। दियार कैर में मैयत की भी खराबी हो जाएगी। जाओ निकलो यहाँ से। वो झिल्ला कर खड़े हो गए। कोठी से इमरान ने बड़े भोलपन से पूछा, नहीं इस कमरे से। वैसे बड़ी जरूरी बातें करनी थी, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। आखिर डिप्टी सेक्रेटरी ने इस वक्त खुदकुशी क्यों की, जब आपका महकमा इसमें दिलचस्पी लेने लगा था? मैं क्या जानूं, वो इसकी आंखों में देखते हुए खुश्क लहजे में बोली, क्या मुमकिन नहीं कि इसे इस निगरानी का इल्म हो गया हो? मुमकिन है। फिर और ये कि आप जानते ही होंगे कि वो मामला बराह रास्त विजरा से ताल्लुक रखता है, और आपने ये भी अक्सर सुना होगा कि मैं महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस के लिए अक्सर काम करता रहता हूँ। रहमान साहब इसकी आंखों में देखते रहे, और अगर इस काम में खलल पड़ा तो? जी हाँ, मैं जानता हूँ, आप खामोश रहिए, रहमान साहब जहरीले लहजे में कहा। लेकिन ये तो फरमाइए, आखिर आपने डॉक्टर दुआगु को क्यों ताक लिया है? ना ताकता तो अपने काम की बात हरगिज मालूम ना होती। क्या मतलब? कोई नामालूम आदमी इसे महकमा खारजा के खिलाफ सुराग रसानी पर मजबूर करता रहा है। इसका कहना है कि चूंकि महकमा खारजा के अक्सर ऑफिसर तुम्हारे जेर इलाज हैं, इसलिए तुम इनसे बहुत कुछ मालूम कर सकोगे। ये कब की इतला है? माथा पर जहर के असरात जाहिर होने से कुछ देर कबल इसने मुझे ये बात बताई थी। रहमान साहब ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इमरान बोल पड़ा, ठहरिए। क्यों? रहमान साहब हाथ रोक कर गुर्राए, क्या आप इसे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं? क्यों? वो मेज पर हाथ मारकर बोले, जल्दी बताओ ना, मेरे पास वक्त नहीं है। इमरान ने वो गुफ्तगू मनोन दोहरा दी जो इन दोनों के दरमियान हुई थी। रहमान साहब किसी फिक्र में पड़ गए। इमरान बेटा अहमकाना अंदाज में इधर उधर चलता रहा, फिर उठा और हाथ झुलाता हुआ बाहर चला आया। इसकी दोनों अमजाद बरामदे में शायद ही इसकी मुंतजर थी। हाय भाईजान, इनमें से एक ठंडी सांस लेकर बोली, रंगत कैसी निखर आई है तुम्हारी। काया पलट उपटन इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल। ये कौन सा उपटन है? दूसरे ने पूछा। अरे तुमने इश्तहार नहीं देखा? अखबारों में हर रोज नई सुर्खी के साथ शाया होता है। आज के अखबारों में सुर्खी जमाई थी, शादी क्यों ना हुई। लेकिन 15 दिन काया पलट उपटन इस्तेमाल करने के बाद 10 शादियां हो गईं, और फिर ये नकोर मारियां मनो उपटन खा गईं। लेकिन वही काली काली नाच जाए, हाँ नहीं तो। इमरान ने खामोश होकर किसी जलेतन शोहरखोर की तरह गर्दन झटक की। ओ मजासाई जान, आपने तो काफी तरक्की कर ली है। किसी उम्र रसीदा बेवा से ट्रेनिंग ली है शायद। मैं खुद किसी बेवा से कम हूँ। हाय आप तो रनवे भी ना हुए, दूसरी ने गर्मनाक लहजे में कहा। भाईजान रनवा क्या होता है? पहली ने पूछा। ये बेचारा यतीम से भी बदतर होता है, क्योंकि यतीम के सर पर हाथ धरने वाले तो बहेजरे पैदा हो जाते हैं, लेकिन इस बेचारे को कोई नहीं पूछता। क्यों दिमाग खराब कर रही हो तुम लोग अपना, पूछ से सुरैया खरखराई। हाँ हाँ जाओ जाकर लगाई बुझाई करो, इमरान सर हिलाकर बोला। जन्नत में महल तामीर हो जाएगा तुम्हारे लिए। इतने में फाटक से हॉर्न की आवाज़ आई। एक बहुत बड़ा मिलिट्री ट्रक आकर रुका था, जिस पर मुसल्ला सिपाही थे। इमरान ने एक लेफ्टिनेंट को नीचे उतरते देखा, जो चौकीदार के करीब पहुंच कर इससे कुछ कहने लगा था। इमरान ने तवील सांस ली और खौफजदा अंदाज में लड़कियों की तरफ देखने लगा। लड़कियां भी मुतय्याराना अंदाज में एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। अब खुदा ये डैडी की इज्जत और आबरू बचाए, सुरैया बड़बड़ाई। चौकीदार बरामदे की तरफ आ रहा था, लेकिन लेफ्टिनेंट फाटक ही पर रुक गया था। छोटा साहब वो आपको पूछता, चौकीदार ने करीब पहुँच कर इमरान से कहा। क्या पूछता? मुलाकात चाहता जनाब, बुला लाओ। नहीं, सुरैया झुल्ला कर बोली, आप खुद तशरीफ ले जाइए। अच्छा, इमरान ने तभी सांस ली और चौकीदार के साथ चल पड़ा। जैसे ही फाटक के करीब पहुंचा, लेफ्टिनेंट ने एड़ियां बजाकर इसे सिलवट किया। यह खत है जनाब, लेफ्टिनेंट ने एक लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमरान ने लिफाफा लेकर चौक किया, खत इसी के नाम था। बकौल देखता रहा, फिर इसे लेकर जेब में रखता हुआ बोला, क्या आप कुछ देर ड्राइंग रूम में इंतजार कर सकेंगे? मैं दरअसल जख्म की ड्रेसिंग कराने जा रहा था। क्या अस्पताल जाएंगे? नहीं, यहीं घर पर आइए, इमरान ने कहा और उसे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले आया। उसे बिठाकर लाइब्रेरी में आया और रहमान साहब की मौजूदगी में ही ब्लैक जीरो का नंबर डायल करके माउथ पीस में बोला, मैं इमरान हूँ, क्या तुम्हारे अलावा और कोई भी इल्म है कि मैं अस्पताल से कोठी पहुँच गया हूँ? नहीं, ठीक। क्या मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस वालों को भी इसका इल्म नहीं हो सकता? अच्छा, देखो 386 पर रिंग करके दाई से पूछो कि इमरान तलबी के लिए कोई दस्ती खत तो नहीं भेजा गया, और मालूम करके फौरन ही मुझे 59W36 पर मुतला करो, जल्दी। इमरान ने रिसीवर रख कर कंखियों से रहमान साहब की तरफ देखा, जैसे मुसलसल घूरे जा रहे थे। क्या किस्सा है, इन्होंने पूछा। मुझे स्टेशन के कमांडो के ऑफिस में तलब किया गया है। क्यों, क्या मतलब, क्या किया गया है? खुदा जाने। एक सेकंड, लेफ्टिनेंट ड्राइंग रूम में मेरा मुंतजर है और ट्रक फाटक पर खड़ा है। क्या करते फिर रहे हो तुम, रहमान साहब उठते हुए गुजाए। बैठिए बैठिए, जवाब मिल जाने पर ही इसका जवाब दे सकूंगा, इमरान ने फोन की तरफ इशारा करके कहा। फोन पर कौन था? मेरा एक शनासा, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन रहमान साहब की आंखों में बेएतबारी साफ पढ़ी जा सकती थी। फिर वो दोनों ही फोन की तरफ घूरते रहे। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ से बोलने वाले की बातों पर हूं हूं करता रहा, फिर बोला, वाईसी को फिर फोन करो, बताओ कि एक ट्रक मिस्टर रहमान के फाटक पर मौजूद है और खत लाने वाला सेकंड लेफ्टिनेंट ड्राइंग रूम में इमरान का इंतजार कर रहा है। इमरान ने फिर सिलसिला मुनकता कर दिया और रहमान साहब बोले, अगर तुमने मुझे देर तक उलझाए रखा तो मैं ठहरिए बताता हूँ, इमरान हाथ उठा कर बोला। वो लोग दरअसल मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। कौन लोग? वही जिनकी निगरानी आपका महकमा करता रहा है, कर्नल डोरंग वगैरह। जी हाँ, लेकिन अभी तक हमें उनके खिलाफ कोई वाज़े सबूत नहीं मिल सका। जी हाँ, जिसके ज़रिए वाज़े सबूत मिल जाने की तवक्का थी, वो तो खुदकुशी कर बैठा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है तो फिर अब आपका महकमा इस मामले को इसी जंग खत्म कर देगा। मजबूरी है, मैं दूसरा जरिया पैदा करने में कामयाब हो चुका हूँ। यानी आपको इतना मिल चुकी होगी कि सर सुल्तान का नया स्टैनो भी इन लोगों से मिलता है। अभी हाल ही में ये बात भी सामने आई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो मोहतात हो जाएंगे, शायद इस स्टैनो वाली चाल कामयाब हो सके, क्योंकि वो वैसे भी नहायत मुखलिस किस्म का गधा है। रहमान साहब किसी सोच में पड़ गए, फिर बोले, आप ये फरमाइए कि जनरल शाहिद के महकमे से आपको क्या सरोकार। मैं जानता हूँ कि YC इसके एक मखसूस सेक्शन का नाम है, और आप ये भी जानते होंगे कि YC महकमा खारजा से भी किसी हद तक ताल्लुक रखता है। और अब ये बताना बेकार होगा कि मैं महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस का एक इन्फॉर्मर हूँ। मैं जानता हूँ, रहमान साहब तरफ लहजे में बोले, और ये भी जानता हूँ कि एक इन्फॉर्मर की हैसियत से तुम सिर्फ सीक्रेट सर्विस से ही रابطہ कायम कर सकते हो, बराह रास्त YC से नहीं। इसका मैजाज सिर्फ सीक्रेट सर्विस का चीफ ही हो सकता है। पता नहीं क्यों ये लोग मुझ पर इतने मेहरबान हो गए हैं कि मैं बाज़ हालात में बराह रास्त वज़ीर ख़ारजा से भी रابطہ कायम कर सकता हूँ। रहमान साहब उसे खामोशी से घूरते रहे। कुछ देर बाद से फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से ब्लैक सिरों ने इतला दी कि वो इसके अहकाम की तामील कर चुका है। इमरान ने सिलसिला मुनकता कर दिया। अब वो थोड़ी देर बाद ठंडी सांस लेकर बोला, शायद एक शानदार खेल शुरू हो जाए। ये लोग जो अभी पकड़े जाएंगे शायद उनके खिलाफ कोई वाज़े सबूत फराहम कर सकें। रहमान साहब कुछ ना बोले, बस सुतूर उसे घूरते रहे। थोड़ी देर बाद किसी गोशे से एक नुस्वानी चीख उभरी। इमरान और रहमान साहब उठकर दरवाजे की जानेब दौड़े। ड्राइंग रूम में चारों खवातीन खड़ी कांप रही थी और लेफ्टिनेंट ने इनकी जानेब रिवॉल्वर तान रखा था। खबरदार, इसने इन दोनों को देखते ही ललकारा, चुपचाप खड़े रहो वरना। अरे अरे, इमरान बौखलाए हुए अंदाज में बोला, ये क्या कर रहे हो भाई साहब? मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताओ वरना एक आपको जरूर कत्ल कर दूंगा। बाहर निकलने का रास्ता? इमरान ने हैरत से कहा, आप फाटा खींचे तो गुजर कर तशरीफ लाए थे। भाई साहब अब रास्ता पूछ रहे हैं? मिलिट्री वालों ने कोठी घेर ली है। अरे तू निकलवाओ बाहर, देखेंगे कि वो तुम्हें कैसे सिलवट करते हैं। मैं सचमुच फायर कर दूंगा वरना मुझे किसी ऐसे रास्ते से बाहर निकाल दो जिधर मिलिट्री ना हो। क्या पता तुम क्या कह रहे हो, भला तुम्हें मिलिट्री से क्या खौफ, जबकि खुद मुझे एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ। मैं सच कहता हूँ। ओ आ गए, इमरान जल्दी से बोल पड़ा। और जैसे ही लेफ्टिनेंट ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, इमरान ने इस पर छलांग लगा दी। औरतें चीखने लगी। रहमान साहब ने इन्हें डांटा। इमरान और लेफ्टिनेंट फर्श पर ढेर हो गए थे। इमरान ने दाहिने हाथ से रिवॉल्वर वाली हाथ पकड़ रखा था और जख्मी बाएं बाजू से इसके दूसरे हाथ को नाकाबिले इस्तेमाल बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। रहमान साहब इसकी मदद को झपटे और दूसरे ही लम्हे में रिवॉल्वर इनके कब्जे में था। इतने में एक मिलिट्री ऑफिसर भी आवाजें देता हुआ अंदर घुस आया। थोड़ी देर बाद पहले आने वाला लेफ्टिनेंट हथकड़ियों समेत नजर आया। इमरान ने नौ वारिस ऑफिसर को अलग ले जाकर आहिस्ता से बोला, इसे YC के शुरू करना है। बहुत बेहतर जनाब, वैसे मैं YC ही की तरफ से आया हूँ। जाली लेफ्टिनेंट के दूसरे 10 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए जो बाहर ट्रक में मौजूद थे। इमरान के बाजू के जख्म से खून बह रहा था और बेगम रहमान बौखलाए हुए अंदाज में चीख रही थी, अरे डॉक्टर को फोन करो, ये सब क्या हो रहा है। इनकी लियाकत से माँ बाप का कलेजा ठंडा हो रहा है, सुरैया ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या रेफ्रिजरेटर को उर्दू में लियाकत कहते हैं? इमरान ने बड़े भोलपन से कहा। बकवास बंद करो तुम लोग। इमरान तुम मेरे साथ चलो, रहमान साहब हो रहा है। वो इसे अपने साथ गुस्लखाने में लाए और बाजू की पट्टी खोलने लगे। फिर एक मुलाजिम को आवाज देकर फर्स्ट एड का बॉक्स लाने को कहा। फिर इमरान से बोले, मेरा महकमा खामोखा इस मामले में कूद पड़ा, जबकि खुद महकमा खारजा भी पहले ही से मोहताज था। बिल्कुल बिल्कुल, अपने महकमे को इससे अलग ही रखें, मैं यही अर्ज करने वाला था। लेकिन तुम? अरे मैं बेचारा क्या, मतलब ये कि तुम बदस्तूर दुश्वारियों में मुब्तला रहोगे। आखिर क्यों? माता की जहर पुरानी। अरे साहब तो क्या मैंने, वो लड़की ज्वेलरी नाफ्टर कहाँ गायब हो गई? यकीन कीजिए डैडी, मुझे यकीन दिलाने की कोशिश ना करो, इसका पता तुम्ही से पूछा जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें देखने वहां गई थी। भला बताएं मैं इसका पता कैसे बता सकूंगा? अगर वो खुद ही मुजरिम नहीं थी तो रूपोश क्यों हो गई? लोग गलत समझते हैं डैडी, मेरे कभी किसी औरत से ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मिलने वाले को कत्ल कर सके। बको मत, मुझे इसका पता चाहिए। अब आज मैं बाद नमाज ईशा वजीफा पढ़कर सोऊंगा, शायद कोई मौके खूब में इसका पता बता जाए। मैं कहता हूँ खामोश रहो, फर्स्ट एड बॉक्स आ गया था और अब रहमान साहब बाजू का जख्म देख रहे थे। तुम्हारी हिमाकतों से मैं भी तंग आ गया हूँ, वो बड़बड़ाए। दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा, शायद जख्म फट गया है और इसमें कुछ मवाद भी मालूम होता है। इमरान कुछ ना बोला। ड्रेसिंग तो हो गई, लेकिन रहमान साहब ने लाइब्रेरी में आकर सिविल सर्जन को फ़ोन किया, फिर फोन रखा ही था कि घंटी बजी। इन्होंने रिसीवर उठाया और माउथ पीस में बोले, यस रहमान स्पीकिंग। ओ पेशानी पर शिकने पड़ गई। वो सुनते रहे और हूँ हूँ करते रहे, फिर बोले, ठीक है कोई बात नहीं। रिसीवर रखकर वो इमरान की तरफ मुड़े और बोले, महकमा खारजा से हिदायत मिली है कि मेरा महकमा इन मामला से दस्तकश हो जाए। नहायत नाकूल मशवरा है, इमरान खुश होकर बोला, लेकिन मेरे वारंट का क्या होगा? मेरी दानिश में इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं। एक औरत जहर से हलाक हुई, दूसरी ने रूपोशी की। हम इस पर शुबा कर रहे हैं और एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो इसका पता यकीनी तौर पर जानता होगा। और इस आदमी का डायरेक्टर जनरल साहब से क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं, रहमान साहब इसे घूरते हुए बोले, मुझे ज़रा बराबर भी परवाह ना होगी। अगर तुम यहीं से गिरफ्तार किए जाओ तब तो फिर मरने को भी बहुत जगह हैं। तुम्हारी मर्जी, रहमान साहब ने लापरवाही से शानों को जंबी दी, लेकिन सिविल सर्जन के मुआयने के बाद इसकी भी क्या ज़रूरत है? बकवास नहीं, सिविल सर्जन के इल्म में लाने की क्या ज़रूरत है कि मैं यहाँ आया था? क्या रहमान साहब की बदनामी ना होगी कि इन्होंने एक हाथ आए हुए मुलजिम को निकल जाने दिया? फिक्र ना करो, वो हाथ झटक कर बोले, और अब खामोश बैठे रहो। कुछ देर बाद सिविल सर्जन भी यहाँ पहुँचा, लेकिन इसने तीन तिकार नहीं की, सिर्फ ये कहा था कि गोली कब लगी थी और पहला ऑपरेशन कब हुआ था। बेहतर है कि आप इन्हें अस्पताल में दाखिल करा दें, सिविल सर्जन ने रहमान साहब से कहा। बाज दुश्वारियों की बिना पर मुमकिन नहीं, रहमान साहब ने जवाब दिया, तो फिर यहीं देखा जाएगा। रहमान साहब ने इमरान के फ्लैट का पता बताकर कहा, मेरी दानिश में तो वही मुनासिब होगा जहां आप फरमाएं। वहां पहुंचाने के बाद मुझे मुतला कर दीजिएगा, शुक्रिया। रहमान साहब ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा और इसके रुख्सत हो जाने के बाद इमरान से बोले, तुम मेरे लिए हमेशा दुश्वारियां पैदा करते रहोगे। मैं मजबूर हूँ, फिलहाल तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। इमरान कुछ ना बोला। फिर जब बेगम रहमान को ये मालूम हुआ कि इमरान वापस भी जा रहा है, तो इन्होंने कोठी सर पर उठा ली और रहमान साहब इन्हें ऊंच नीच समझाने के सिलसिले में काफी अहमक नजर आने लगे। तो मुश्किल तमाम हालात काबू में आए और इमरान को वहां से रुख्सत कर दिया गया। फ्लैट में पहुंचकर इमरान ने ब्लैक जीरो को फिर फोन किया और इसे हिदायत की कि सारे महातहत इसके फ्लैट की निगरानी करें। जोजफ और सुलेमान में झड़प हो गई। सुलेमान कह रहा था कि आखिर इसने इस हादसे की इतला क्यों नहीं दी थी। जोजफ कह रहा था कि वो सिर्फ एक बावची है, लिहाजा उसे इन मामला से कोई दिलचस्पी ना होनी चाहिए। ये तो गश्त खून का मामला था जिसके लिए इस जैसे सुरमा की जरूरत थी। सले जब की चाहे कश्ती लड़कर देख ले, सुलेमान ने इसे ललकारा। और जब इमरान ने साले का तर्जुमा अंग्रेजी में किया तो जोसेफ आपे से बाहर हो गया। कहने लगा, जिंदा ना छोड़ूंगा, जब मेरी कोई बहन ही नहीं थी तो ये मुझे साला कैसे कह रहा है। नहीं बॉस, तुम दखल ना करो, ये इज्जत और आबरू का मामला है। अगर सचमुच कोई बहन होती तो दूसरी बात थी, मैं बिल्कुल खफा ना होता। बमुश्किल तमाम ये मामला भी रफा दफा हुआ और इमरान ने जोसेफ से कहा कि वो नीचे सिविल सर्जन और नायबों का इंतज़ार करे। वो जानता था कि अगर जोसेफ या खुद इसने इनका इस्तकबाल ना किया तो उसके मातहत इन्हें फ्लैट में हरगिज़ ना दाखिल होने देंगे। जोसेफ को नीचे भेजकर वो बैठा ही था कि फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ डॉक्टर दुआगू बोल रहा था, क्या तुम हो इमरान? मैंने अस्पताल में फ़ोन किया था, मालूम हुआ कि तुम वहाँ नहीं हो। मेरा ख्याल है कि अभी तुम्हारा ज़ख्म ठीक ना हुआ होगा, फिर क्यों चले आए? जी उकता गया था, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, डॉक्टर की आवाज़ भराई हुई थी। जिस कमरे में तुम थे वो तो अब काटने को दौड़ता होगा। मैं माता को कभी ना भुला सकूंगा। कितनी अच्छी लड़की थी, तुम्हें किस कदर चाहने लगी थी, जानते हो क्यों? मैं नहीं जानता, महज इसलिए कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी परवाह नहीं करते। इसकी मोहब्बत का मौलिक दरअसल जज्बा हमदर्दी हुआ था। क्या मैं तुम्हारे फ्लैट में आ सकता हूँ? तुमसे इसकी बातें करके जी हल्का करूँगा। आ जाओ डॉक्टर, मैं भी बहुत मगमूम हूँ डॉक्टर, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकता हो गया। लेकिन इसके आने से कबल सिविल सर्जन अपने दो स्टेंटों और एक नर्स के साथ वहां पहुंच गया। आला जुराही को पकाने के लिए स्टूट पर पानी रख दिया गया। नर्स कबूल सूरत और कम उम्र थी तो देसी ही, लेकिन उर्दू में अंग्रेजी लहजे में बोलने की कोशिश करती थी। फिर जब इमरान ऑपरेशन के लिए बड़ी मेज पर लेट रहा था, सुलेमान ने डॉक्टर दुआगू की आमद की इतला दी। इन्हें नशिस्त के कमरे में बिठाओ, इमरान ने कहा। ऑपरेशन शुरू हुआ। उलझावे वाला केस नहीं था इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी। आप मुकम्मल तौर पर आराम कीजिए, कम से कम 2 दिन, सिविल सर्जन ने इमरान से कहा। इस हाथ को अगर ज़्यादा जम्बिश ना दी जाए तो बेहतर होगा। ठीक इसी वक्त नशिस्त के कमरे से किसी की चीखने की आवाज़ आई। वो सब उधर झपटे, इमरान भी पीछे था। नशीस के कमरे में पहुंच कर इन्होंने देखा कि डॉक्टर दुआगू चीखता हुआ आमदोरफ के दरवाजे की तरफ भाग रहा है। दरवाजे से गुजरकर बरामदे में पहुंचा और उसी तरफ दौड़ता हुआ जीना तय करने लगा। इमरान वगैरह जहां थे वहीं रहे। अहमकों ने खिड़की से देखा कि दुआगू बिल्कुल इसी अंदाज में सड़क पर भी दौड़ा जा रहा है, हालांकि उसकी कार वहीं खड़ी थी। इमरान खिड़की से सर निकाल कर चीखा, पकड़ो पकड़ो, ए जनाब आप बराए कराम लेटिए, सिविल सर्जन ने इसका दाहिना बाजू पकड़कर ख्वाबगाह की तरफ घसीटते हुए कहा, ये कौन था, क्यों भागा इस तरह? एक मजलूम आदमी, इमरान ने ठंडी सांस ली। मकसद हासिल हो चुका था। खिड़की से सर निकाल कर चीखने का मतलब यही था, केस के मातहत डॉक्टर दुआगु की तरफ ना सिर्फ मुतवज्जह होंगे बल्कि इनमें से कोई इसका ताकुब भी करे। सिविल सर्जन इसे बेडरूम में लाया और खुद एक कुर्सी पर बैठता हुआ बड़बड़ाया, याद नहीं पड़ता कि इसे कहाँ देखा था। अरे आप शहर की इस मशहूर तरीन हस्ती को नहीं जानते? इमरान गांव तकिए से टेक लगाता हुआ रहा, ये डॉक्टर दुआगु था। सिविल सर्जन ने बुरा समूह बनाकर सर को झटका दिया और निफिर आमेर सहजे में बोला, जगा दिया मैं, मगर जनाब पब्लिक तो फैज याब हो रही है, तो हम परस्तों के जंगल में और क्या होगा। मुझे खुद भी हैरत है, इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, उल्लू बना रहा है लोगों को, मैं इसमें यकीन नहीं रख सकता कि ज्यादातर जिस्मानी अमराज की वजह जहनी होती है और इन्हें महज अपनी कुव्वत इरादे की मदद से या खुद को दूसरों की कुव्वत इरादे के हवाले करके दूर किया जा सकता है। वो तो साबित कर देता है जनाब, जबानी अमली तौर पर, जबानी ही सही लेकिन ये भी मुश्किल काम है। क्या आपने उसका कोई केस कामयाब होते देखा है? सिविल सर्जन ने पूछा। मुझे ही देख लीजिए, बंदूक की आवाज़ सुनकर चारपाई के नीचे देख जाता हूँ, अब देखने के बाजू पर रिवॉल्वर की गोली का जख्म लिए बैठा हूँ। ये तो कोई बात ना हुई, आपके हाथ में भी रिवॉल्वर होता तो बात भी थी। सिविल सर्जन हंस कर बोला, अच्छा जनाब मैं फिर अर्ज करूँगा कि बराए करम एहतियात बरतें वरना जहमत में पड़ जाएंगे। कम अज कम एक हफ्ता और आराम कीजिए। यकीनन यकीनन, इमरान सर हिलाकर बोला। आपकी देखभाल कौन करेगा? सिविल सर्जन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। वो तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। जी हाँ, इमरान के चेहरे पर हिमाकत बिखर गई। बेगम साहिबा कहाँ हैं? इन्होंने तो ना आने की कसम खा रखी है। महके में है? जी अभी तो महके में भी नहीं है, अभी शादी नहीं हुई सर, नर्स ने हंस कर कहा। खैर खैर, तुम इनकी देखभाल करोगी? सिविल सर्जन उठता हुआ बोला। ओके सर, नर्स ने कहा। सिविल सर्जन के जाने के बाद इमरान बड़ी देर तक ख्याल में खोया रहा। डॉक्टर दुआगु क्यों भागा था इस तरह? इस पर क्या गुजरी होगी? क्या इसके मातहत इसका इशारा समझकर दुआगु का ताकुब कर सके होंगे? दफन फोन की घंटी बजी और नर्स कुर्सी से उठकर फोन की तरफ झपटी। ये फोन इधर उठा दो, इमरान ने इससे कहा। फोन पर ब्लैक जीरो था। न जाने क्यों इस वक्त इसने X2 वाले मखसूस फोन पर रब्ता नहीं कायम किया। हेलो, इमरान ने माउथ पीस में कहा, क्यों इस नंबर पर किया? मैंने कहा मुमकिन है, कुछ नहीं मोहतात रहो, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया और इमरान दूसरे कमरे में जाने के लिए पलंग से उतरने लगा। देखिए जनाब, नर्स उठती हुई बोली, ये ज्यादती है। एक मिनट, इमरान हाथ उठाकर बोला, मैं अभी आया, तुम यहीं ठहरो। वह X2 के फोन वाले कमरे में आया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि घंटी बजी। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो बोल रहा था, सफदर ने इतला दी है कि कुछ देर पहले डॉक्टर दुआगु आपके फ्लैट से चीखता हुआ बरामद हुआ था और एक तरफ दौड़ता चला गया था। सफदर और चौहान इसका ताकुब कर रहे हैं। तुम्हें किससे इतला मिली है? इमरान ने पूछा। साजर नैमानी से। क्या इसका कार अब भी फ्लैट के सामने मौजूद है? जी हाँ, दूसरी तरफ से जवाब मिला। तनवीर और खाबर इसकी देखभाल कर रहे हैं। पार्ट 12 यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। नॉवेल डॉक्टर दुआगु का बकिया हिस्सा पार्ट 13 में समाप्त करवाइए।